जय राधा
फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद के
श्री श्री राधा गोविंद देव के सीताराम लक्ष्मण हनुमान के श्री श्री पंच तत्व के समवेत गौर भक्त वृंद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की निताई गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती रुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी श्रीमद्भागवतम स्कंद 2 अध्याय 9 श्लोक संख्या 35 अध्याय का शीर्षक है श्री भगवान के वचन का उद्धरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावशेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु
प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वः शब्दात् यथा जिस तरह महान्ति सर्वव्यापी भूतानि तत्व भूतेषु उच्च अवचेषु लघु तथा विराट में अनु पीछे प्रविष्टानि प्रवेश कर दिया अप्रविष्टानि प्रविष्ट नहीं तथा उसी तरह तेषु उनमें न नहीं तेषु उनमें अहम् मैं अनुवाद अर्थात करें श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद के अनुवाद है ब्रह्मा तुम ये जान लो कि ब्रह्मांड के सारे तत्व विश्व में प्रवेश करते हुए भी प्रवेश नहीं करते हैं उसी प्रकार मैं अपने द्वारा उत्पन्न प्रत्येक वस्तु में स्थित रहते हुए भी प्रत्येक वस्तु से पृथक रहता हूँ तात्पर्य भौतिक सृष्टि के महान तत्व अर्थात क्षिति जल पाव समीर तथा गगन समस्त प्रकट वस्तुओं के चाहे समुद्र हो या पर्वत अथवा जलचर पौधे सर्प पक्षी पशु मनुष्य देवता अथवा जिनका भी अस्तित्व है शरीर में प्रवेश करते हैं किंतु साथ ही साथ वे उनसे पृथक भी स्थित रहते हैं चेतना के समुन्नत होने पर मनुष्य शरीर क्रिया तथा भौतिक विज्ञान का अध्ययन कर सकता है किंतु ऐसे विज्ञानों के मूल सिद्धांत भौतिक तत्वों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है चाहे मनुष्य का शरीर हो या पर्वत हो चाहे ब्रह्मा समेत देवताओं का शरीर हो वे सभी एक से तत्वों क्षिति जल इत्यादि से बने और उसी के साथ ही ये तत्व शरीर से बाहर भी हैं। पहले तत्वों की उत्पत्ति हुई अतः वे शरीर में बाद में प्रविष्ट हुए किंतु दोनों ही दशा में वे विश्व में प्रविष्ट हुए और नहीं भी प्रविष्ट हुए इसी प्रकार परमेश्वर अपने विभिन्न शक्तियों अंतरंगा तथा बहिरंगा सहित इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु के भीतर स्थित हैं और उसी के साथ साथ वे प्रत्येक वस्तु के बाहर वैकुंठ लोक में स्थित रहते हैं जैसा कि पहले कहा जा चुका है ब्रह्म संहिता में इसका वर्णन अति सुंदर ढंग से इस प्रकार मिलता है आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता विस्तावीर्य एव निज रूप तया कलावि गोलोको एव निवसति अखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमाहं भजामि मैं उन आदि ऋषि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अपने सच्चिदानंद रूप अंतरंग शक्ति के विस्तार से स्व तथा अंशों का सुख उठाते हैं और साथ ही वे सृष्टि के कण कण में भी व्याप्त रहते हैं उसी ब्रह्म संहिता में उनके अंशों के इस विस्तार का और भी ठीक तरह से वर्णन हुआ है एको पिसौ रचयितुं जगदंड कोटि यच्छक्तिरस्ति जगदंड चयाय दन्तः अंडांतरस्त परमाणु चयांतरस्तम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि मैं उन आदि श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अपने एक अंश के द्वारा प्रत्येक ब्रह्मांड तथा प्रत्येक परमाणु में प्रविष्ट होते हैं और इस प्रकार समग्र सृष्टि भर में अपने अनंत शक्ति का असीम प्राकट्य करते हैं निर्विशेषवादी कल्पना कर सकते हैं और चाहे तो देख सकते हैं कि परब्रह्म सर्वव्यापी है इस प्रकार वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उनके साकार होने का कोई संभावना नहीं है यही भगवान के दिव्य ज्ञान का रहस्य है यह रहस्य भगवान का दिव्य प्रेम है और जो भी भगवान के ऐसे दिव्य प्रेम से पूरित होता है वही प्रत्येक परमाणु तथा जड़ एवं चेतन पदार्थ में भगवान के दर्शन कर सकता है साथ ही वह भगवान को उनके धाम गोलोक में अपने नित्य पार्षदों के साथ जो उनके विस्तार है नित्य लीला करते देख सकता है यही दृष्टि आध्यात्मिक ज्ञान का वास्तविक रहस्य है जैसा कि भगवान ने प्रारंभ में कहा गया है स रहस्यम तदंगम च ये रहस्य परमेश्वर के ज्ञान का परम गुह्य भाग है इसे चिंतन बौद्धिक व्यायाम द्वारा कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते यही रहस्य ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी द्वारा बताई गई निम्नलिखित विधि से प्रकाश में आता है प्रेमांजना छुरित भक्ति विलोचने न संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि मैं उन आदि श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जिनका दर्शन शुद्ध भक्त अपने आंखों में भगवत प्रेम रूपी अंजन लगाकर सदैव अपने हृदयों के भीतर करते हैं ये गोविंद समस्त दिव्य गुणों से पूर्ण श्याम सुंदर स्वरूप है अतः भगवान प्रत्येक परमाणु में स्थित होकर भी शुष्क चिंतनों के चिंतकों के लिए अदृश्य बने रहते हैं, तो भी शुद्ध भक्तों के नेत्रों के समक्ष सारा रहस्य खुल जाता है, क्योंकि उनमें प्रेमाजल जो लगा रहता है। ये भगवत प्रेम भगवान की प्रेमा भक्ति की साधना से ही प्राप्त हो सकता है और किसी तरह नहीं। भक्त की दृष्टि सामान्य नहीं होती, वो भक्ति के द्वारा परिष्कृत हो जाती है। दूसरे शब्दों में जिस प्रकार ब्रह्मांड के सारे तत्व बाहर तथा भीतर है, उसी तरह भगवान के नाम रूप गुण लीलाएं पार्षद जिस तरह उनका शास्त्रों में वर्णित है या भौतिक संसार से परे हुए वैकुंठ लोक में दिखते हैं, ये सभी भक्त के हृदय में उसी प्रकार दिखते हैं जैसे कि टेलीविजन में वस्तुएं दिखती हैं। अल्पज्ञानी पुरुष इसे नहीं समझ पाता, यद्यपि वो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत टेलीविजन के द्वारा दूर दूर की वस्तुएं देख सकता है, वस्तुतः आध्यात्मिक दृष्टि से बड़ा चढ़ा हुआ व्यक्ति अपने हृदय में भगवान के धाम का टेलीविजन प्रतिबिंब सदैव प्राप्त कर सकता है। भगवान के ज्ञान का यही परम रहस्य है। भगवान प्रत्येक प्राणी को इस संसार के बंधन से मुक्ति दिला सकते हैं, किंतु विरले ही भगवत प्रेम का अधिकार प्रदान करते हैं, जिसकी पुष्टि नारद ने भी की है, मुक्तिं ददाति करेचि स्मर भक्ति योगम। भगवान की यह दिव्य भक्ति इतनी अद्भुत है कि सुपात्र भक्त मनोनुकूल कार्य में तल्लीन रहता है और उनसे दूर नहीं जाता। इस प्रकार भक्त के हृदय में भगवत प्रेम का उदय एक महान रहस्य है। ब्रह्मा जी पहले ही नारद से कह चुके हैं कि भगवान की दिव्य भक्ति में लीन रहने के कारण उनकी इच्छाएं कभी भी अतृप्त नहीं रहती, न ही उनके मन में भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा रहती है। भक्तियों की यही सुघराई है तथा यही रहस्य है। जिस प्रकार अच्युत होने के कारण उनकी इच्छा अशुभ है, उसी प्रकार दिव्य भक्ति में लगे भक्तों की इच्छाएं भी अच्युत होती है। किंतु जिसे भक्ति के रहस्य का ज्ञान नहीं, ऐसे अज्ञानी के लिए यह समझ पाना कठिन है। जिस प्रकार की पारस पत्थर की शक्ति को समझ पाना, पारस पत्थर अत्यंत विरल है, उसी प्रकार भगवान का शुद्ध भक्त भी लाखों पुरुषों में विरले ही पाया जाता है। कोटीश्वपी महामुने, ज्ञान के द्वारा जितनी भी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती है उनमें से भक्ति में योग सर्वोच्च और सर्वाधिक गुह्य सिद्धि है। यहां तक कि योगाभ्यास से प्राप्त होने वाले अष्ट सिद्धियों में से भी अधिक गुप्त। अतः भगवान ने भगवद गीता में अर्जुन को इस भक्ति योग का उपदेश दिया है, सर्व गुह्यतमं भूय सुनो मे परमं वचः। भगवद गीता में सब गोपनीयों में भी गोपनीय मेरे पर सार वचन को फिर से सुनो, इसी वचन की पुष्टि ब्रह्मा जी द्वारा नारद को कहे गए शब्दों से होती है। इदं भागवतं नाम यन्मे भगवतोदितं संग्रह विभूतीनां त्वमेव विपुली कुरु। ब्रह्मचर्य नारद से कहा, मैंने भागवत के विषय में तुमसे जो कुछ कहा है उसे ही भगवान ने मुझसे कहा था और मैं तुम्हें सुझाव दे रहा हूँ, जिससे तुम इन कथाओं का उत्तम ढंग से विस्तार कर दो और लोग भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति से गुह्य भक्तियों को सरलता से समझ सके। यहाँ यह भी ध्यान देने की बात है कि ब्रह्मा को भक्तियों का रहस्य भगवान ने स्वयं बताया था। ब्रह्मा ने उस रहस्य को नारद को, नारद ने उसे व्यास को और व्यास ने शुक्रदेव गोस्वामी को समझाया और यही ज्ञान शुद्ध शिष्य परंपरा से अब तक चला आ रहा है। यदि कोई इतना भाग्यशाली हो कि उसे शिष्य परंपरा का यह ज्ञान प्राप्त हो सके तो भगवान के रहस्य तथा उनके शब्द अवतार श्रीमद् भागवत के रहस्य को समझ सकता है। ओम अज्ञान तिमिरांधश ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदी गौर भक्तवृंद। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यथा महांति भूताने भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु नतेष्वः। तो श्रीमद् भागवतम का ये जो अध्याय है इसमें बहुत ही सार तत्व का वर्णन स्वयं भगवान अपने मुख कमल से करते हैं, ब्रह्मा को इसका विशद वर्णन करते हैं। तो भागवतम का ये रहस्य, क्योंकि भागवतम वास्तव में कई सारे रहस्यों से भरा पड़ा है। और वास्तव में श्रीमद् भागवतम क्या वस्तु है? भागवतम कृष्ण से अभिन्न है। कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय, प्रति शब्दे प्रति अक्षरे नाना शास्त्र, नाना अर्थ कहे कि भागवत कृष्ण से अभिन्न है। और कोई व्यक्ति केवल इस श्रीमद् भागवतम को अपने जीवन में गंभीरता से पकड़ता है, और वैसे भी सारे शास्त्र श्रीमद् भागवतम का गुणगान करते हैं, क्योंकि सारे वैदिक ग्रंथों का ये परिपक्व फल है। तो कई लोग होते हैं कई प्रकार के फलों को खाना चाहते हैं, लेकिन जैसे फलों का राजा है, कोई फलों का राजा जैसे मैंगो है, तो उसी प्रकार से कई सारे वेद उपनिषद वेदांत सूत्र संहिताएं हैं, तंत्र शास्त्र आदि है, इतिहास है, पुराण आदि है, इन सबको पढ़ना, उन सबका जो सार है उनको निचोड़ा जाए, उनका जूस निकाला जाए, तो वो श्रीमद् भागवतम है। और कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को अपने जीवन में धारण कर लेता है तो श्रीमद् भागवतम का जो परम रहस्य है वो उसके हृदय में प्रकट हो जाता है। और भागवतम का परम रहस्य क्या है? प्रेम कुमार्थो महान, कि कृष्ण के लिए अनन्य अखंड जो प्रेम है वो वास्तव में श्रीमद् भागवतम का सार है। और इसलिए भागवतम ये प्रेम शास्त्र है, जो भगवत प्रेम का वर्णन अखंड रूप से करता है और अतुलनीय है। भागवतम में जो ये भगवत प्रेम की चर्चा है, जितने विस्तार रूप से है, विशद रूप से है और जितनी सटीक है, वो किसी और ग्रंथ में नहीं पाई जाती। इसलिए कोई व्यक्ति अपने हृदय में भागवतम को धारण कर सकता है यदि वो केवल श्रीमद् भागवतम को नित्य रूप से श्रवण करता है। इसलिए प्रभुपाद बहुत जोर देते थे, उन्होंने एक एक श्लोक हमें प्रदान किया है कि एक एक श्लोक पर हम मंथन करें, चर्चा करें, उनके तात्पर्यों का से हम शिक्षा प्राप्त करें। तो ऐसे प्रभुपाद ने एक एक हमें श्लोक दिया है ताकि हम श्रीमद् भागवतम का जो सार है हम उसको समझ सकते हैं। तो भागवतम को समझने के लिए एक ही उपाय है, क्या है? चैतन्य महाप्रभु को जब पूछा तो महाप्रभु ने कहा, भागवत पढ़ो गया भागवत स्थाने एकांत आश्रय कर चैतन्य चरण। स्वरूप दामोदर ने कहा कि किसी व्यक्ति को भागवतम का अध्ययन करना है, क्योंकि भागवतम को समझना मीन्स कृष्ण को समझना, भागवतम से आसक्ति उत्पन्न होना मीन्स कृष्ण से आसक्ति उत्पन्न होना। तो इसमें कोई अंतर नहीं है। भागवतम का दर्शन करना मीन्स साक्षात कृष्ण का दर्शन करना, भागवतम का स्पर्श करना मीन्स साक्षात कृष्ण का स्पर्श करना। हाँ, लेकिन हम इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि इतना ये श्रीमद् भागवत रूपी कृष्ण हमारे सामने है, लेकिन रतिना जन्मिल केनो तवाय, मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि मेरे बिल्कुल भी रति ऐसे कृष्ण रूप श्रीमद् भागवतम से नहीं है। भागवतम का स्मरण ही नहीं होता, पूरा दिन चला जाता है। और भागवतम में सुखदेव गोस्वामी आचार्यगण कहते हैं, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती रुद्रम श्लोकेर भक्तिर भवति नैष्टिकी। नैष्टिकी भक्ति आपके हृदय में धारण करनी है तो हे साधक श्रीमद् भागवतम का नित्य रूप से सेवन करो, श्रीमद् भागवतम को सुनो तो तो पद्म पुराण में कई प्रकार के श्रोताओं का वर्णन किया है कि सुनने वाले कई प्रकार के डिवोटीज होते हैं, लेकिन वास्तव में एक उचित श्रोता को किस प्रकार से होना चाहिए, किस प्रकार से इस भागवतम को अपने हृदय में धारण करना चाहिए। तो पद्म पुराण कहता है कि कुछ अधम श्रोता होते हैं और कुछ होते हैं उत्तम श्रोता। अधम और उत्तम, बल्कि महाप्रभु उत्तम और अधम का विचार नहीं करते हैं, लेकिन यह श्रीमद् भागवतम क्या कर रहा है, अधम और उत्तम का विचार कर रहा है। तो अधम या उत्तम श्रोता कौन से हैं? पहले प्रकार का श्रोता है, हमारा सब्जेक्ट मैटर कुछ और है, लेकिन हम वहां तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो जो उत्तम प्रकार के श्रोता हैं, उनके प्रकार चार प्रकार के कहे गए हैं, और जो अधम प्रकार के श्रोता हैं, वो भी शास्त्र में चार प्रकार के कहे गए हैं। तो हम अपने हृदय की जो अधमता है उसको त्याग करने के लिए भक्तों के संग में आते हैं। कई प्रकार की विपदाओं से हमारा जो हृदय है वो भरा हुआ है, तो लेकिन हम अधम से उत्तम बनते हैं। कैसे बनते हैं? भगवान के भक्तों के संग के द्वारा, श्रीमद् भागवतम का श्रवण के द्वारा, नाम संकीर्तन आदि के द्वारा। तो जो उत्तम प्रकार के श्रोता है उसमें सबसे पहले है चातक, और अलग अलग पक्षियों से या अलग अलग प्राणियों से तुलना की गई है, और उनके गुणों के आधार पर उस श्रोता को डिफाइन किया गया है, उसकी परिभाषा प्रदान की गई है कि जो पहला श्रोता है उत्तम, उसकी तुलना चातक पक्षी से की जाती है, या जिसको पपीहा कहते हैं। तो ऐसे चातक पक्षी जो वर्षा ऋतु का जो प्रथम जल है उसी का ही पान करना चाहता है, उसी को ही पीना चाहता है। वो मर जाए लेकिन किसी और पानी को पीना नहीं चाहता। हाँ, कुछ लोग होते हैं ना मिनरल वाटर ही पिएंगे, और कुछ पानी नहीं पिएंगे। तो वैसे ही चातक पक्षी उस प्रकार से है, प्रथम वर्षा ऋतु का जो जल है उसका पान करने के लिए, उसको पीने के लिए वो तड़पता है। सारी चीजों को छोड़कर अपने जो चोंच है मुंह को ऊपर करते हुए एक तक बिना पलक झपकाए वो देखता रहता है बादलों की ओर, कब वो बादल गर्जना करेंगे और कब जल का जो पहली बूंदे है वो गिरेगी और मैं उसको पान करूंगा। हाँ, और वो किसी और चीज को नहीं ग्रहण करना चाहता। तो उसी प्रकार से जो भक्त है, उत्तम श्रोता है, वो सारी चीजों को छोड़कर अन्य किसी चीजों के बारे में श्रवण करने के लिए लालायित नहीं रहता। वो केवल कृष्ण और कृष्ण भक्तों के चरित्र आदि के अलावा अपना जो चित्त है, अपना जो मन है, अपना जो हृदय है, या अपनी जो श्रवण इंद्रियां है, वो किसी और में लगाता नहीं। कृष्ण से संबंधित चीजों को श्रवण करने के लिए वो ईगर रहता है, वो बाकी सब चीजों को ठुकराता है, सारी चीजों को दूर करता है। हाँ, किसी और चीज के प्रति वो आसक्त नहीं रहता, वो केवल किसके बारे में सुनना चाहता है, कृष्ण। इसलिए परीक्षित महाराज जब पूछते थे शुकदेव गोस्वामी को कि आप मुझे सुना तो रहे हो बहुत सारी चीजें, लेकिन मेरे ये प्रश्न है कि यदि कृष्ण से संबंधित है तो वही चीज सुनाओ, अन्यथा बाकी चीजें मुझे मत सुनाओ। हम तो कहते कि कृष्ण से संबंधित जो चीजें नहीं है वो सुनना मुझे, उसमें मैं और अधिक रस का अनुभव करता हूं। हाँ, तो इस प्रकार से जो भक्त है, उत्तम श्रोता है, वो तो वास्तव में जो कृष्ण से भरे हुए, कृष्ण कथा से भरे हुए शास्त्र है, उनके अलावा अपने मन को, अपने चित्त आदि को किसी और चीज में लगाता नहीं है, और कृष्ण के श्रवण करने के लिए वो सब चीजों का त्याग करने के लिए तत्पर रहता है। इसलिए तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि कृष्ण कथा भक्तों के माध्यम से सुननी चाहिए। और वास्तव में जो भगवत भक्त जिनके हृदय में प्रेम है, जैसे प्रभुपाद ने तात्पर्य में कहा, वो जब कृष्ण कथा का वर्णन करते हैं तो वास्तव में कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों को अपने हृदय में देखते हैं, कृष्ण के कार्यकला उनके हृदय में समंदर की लहरों की भांति आते और जाते रहते हैं। हाँ, जैसे प्रभुपाद ने कहा टेलीविजन चलता है अंदर। हाँ, अभी तात्पर्य में हम पढ़ रहे थे, टेलीविजन वैकुंठ से लाइव टेलीकास्ट होता है, लेकिन उसके लिए जैसे वेव्स तो है सब जगह है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। हाँ, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट कैसा होना चाहिए? प्रॉपर हृदय जो कृष्ण प्रेम से पूरित हो। अभी हम सबके पास इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन उसका डब्बा हो गया है, मतलब बिल्कुल खराब हो गया है। हाँ, सही ब्रांड का नहीं है। तो हो ऐसा प्रेमांजन जिस हृदय में है, कामांजन नहीं, उसी हृदय में वास्तव में जो कृष्ण लीला है, कृष्ण कथाएं हैं, वो भरी होती हैं, और फिर उसका वर्णन करता है जो व्यक्ति है। तो ऐसा प्रथम श्रोता चातक है, और दूसरा है हंस। हंस भी एक श्रोता है। तो हंस की खासियत क्या है? हंस ऐसी मशीन है जो वैज्ञानिक नहीं बना सकते। दूध और जल एक साथ मिश्रित हुआ है, तो हंस जब पीता है तो पानी को अलग से छोड़ता है, पानी में से केवल दूध को ग्रहण करता है, उसको सार ग्राही होता है। तो कई वक्ता होते हैं, वो वक्ता कम होते हैं लेकिन वक्ते बहुत है। कृष्ण कथा के अलावा सारे दुनिया भर की चर्चा करेंगे, जैसे सोप और बड़े बड़े वक्ता हैं, हजारों लाखों लोग उनको सुनते हैं, लेकिन वो किसकी चर्चा करेंगे? बीमारियों की चर्चा करेंगे, दवाइयों की चर्चा करेंगे, और पता नहीं कितनी फालतू चर्चा करते रहेंगे। कृष्ण कथा इतना भरा पड़ा है, क्यों नहीं हम कृष्ण का वर्णन करते? क्यों हम ये सब अनावश्यक चीजों का वर्णन करते हैं? और वास्तव में हमारा जन्म यही है, कृष्ण का गुणगान करना, कृष्ण का वर्णन करना। तो ऐसे जो हंस है वो दूध को अलग करता है, जल को अलग करता है, सार वस्तु को स्वीकारता है। तो जो श्रोता है वो अनेक शास्त्रों से या तो सुनता है या पढ़ता है, लेकिन क्या करता है? वो सार को ग्रहण करता है। ये एक उन्नत श्रोता का स्थिति है, वो जो सार वस्तु है उसी को ही वो स्वीकार करता है। और तीसरा जो श्रोता है उत्तम, जिसको कहा गया है शुक, शुक का मतलब है तोता। तो जो शुक जैसा श्रोता है वो क्या करता है कि वो इतना गंभीरता से श्रवण करता है कि उसके अंदर वक्ता की एबिलिटी आ जाती है। वो इस प्रकार से कृष्ण कथा को धारण करता है कि कृष्ण कथा को वो अपने अनुभूति के साथ प्रस्तुत करने का सामर्थ्य उसमें रखता है। इस प्रकार से शुक है, तोता है, और जो उसने सुना है उसी को और अधिक मिठास की भांति वर्णन करने का वो सामर्थ्य रखता है। जैसे उसने सुंदर रूप से सुना है, वैसे ही उसके अंदर योग्यता आ जाती है श्रवण करते रहने से कि वो सुंदर रूप से उस कृष्ण कथा का वर्णन कर सकता है। और जो तीसरा प्रकार का श्रोता है जिसको कहते मीना, मीन का मतलब है मछली। तो जो मछली है, मछली का एक गुण है उसकी आंखों का, वो कभी अपनी पलके झपकती नहीं है। तो उसी प्रकार से श्रोता एक तक बिना अपने पल के क्या कहते झपक के अपलक एक तक कृष्ण कथा को सुनता रहता है, निरंतर पलक को छपके बिना निरंतर सुनता रहता है। वो चाहता है कि और अधिक ये कृष्ण कथा का रसायन है मेरे कानों से मेरे हृदय में पहुंचे और मैं सारे त्रितापों से मुक्त हो जाऊंगा। यही वास्तव में दवाई है। तो हम मछली के उल्टे हैं, मछली तो अपनी पलक झपकाती नहीं है और हम अपनी पलक खोलने के लिए तैयार नहीं है। एक बार वो चिपक गई, जैसे कहते ना फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, खुलेगा नहीं। तो वैसे ही है हमारी स्थिति। तो इस प्रकार के जो उत्तम श्रोता है जिनका गुणगान शास्त्रों में किया है, और वास्तव में यही है कृष्ण कथा को हृदय में धारण करने के लिए योग्य था, क्योंकि हजारों कृष्ण कथा रूपी ये जो बन्या है ये रिवर हमारे सामने बहती जा रहे हैं, लेकिन हम उसको अपने हृदय में धारण नहीं कर पा रहे हैं। तो परीक्षित महाराज और जो रसिकानंद प्रभु हैं, श्यामानंद प्रभु आदि हैं, हाँ, ये सब कृष्ण कथा श्रवण और कीर्तन के महान उदाहरण है। तो ये तो हुए उत्तम श्रोता, लेकिन अधम श्रोता क्या है? अधम श्रोता पहला तो है जिसको संस्कृत में वृक कहा गया है। वृक का मतलब है भेड़िया। जो भेड़िया होता है ये अधम श्रोता का पहला रूप है। भेड़िया का मतलब है जो कथा सुनते समय डिस्टर्ब करते रहता है, एक दूसरे को डिस्टर्ब करेगा। तो जिसकी ये वृत्ति है, चाहे कृष्ण कथा हो कुछ ना कुछ कारण निकालेगा, किसी को चुकोटी निकाल देगा पीछे से। हाँ, जैसे मुझे याद है हमारे एक भक्त थे, वो पीछे बैठते थे सबसे आखिरी में, और जो सबसे आगे जो डिवोटी बैठा है उसका मोबाइल से ये पीछे अपने मोबाइल से उसके मोबाइल की रिंग बजाते रहते थे। तो मतलब इस प्रकार का एटीट्यूड हम कृष्ण कथा में बैठते हैं केवल अपना जो प्रेजेंस है वो दिखाने के लिए कि मैं भी श्रोता, मैं भी श्रीमद् भागवतम से मैं रुचि रखता हूं, मैं भी नियमित कीर्तनीय सदाहरि हूं, मैं भी नियमित श्रीमद् भागवतम का श्रवण करता हूं। तो जो वास्तव में डिस्टर्ब करते हैं दूसरों को और वक्ता को भी डिस्टर्ब करते रहते हैं, कुछ वक्त होते हैं वो वक्ता को दूर दूर से कुछ ऐसी चीजें करेंगे कि वो वक्ता को हंसा देंगे या परेशान करेंगे, तंग करेंगे। तो इस प्रकार से डिस्टर्ब करने की जो भावना है जिनके अंदर होती है और उस भावना से वो श्रवण करते हैं, वो वास्तव में वृक है या भेड़िए के समान है। तो भागवत या पद्म पुराण ऐसे अधम श्रोताओं का वर्णन करता है। और दूसरा है भुरुंड, भुरुंड एक पक्षी है जो हिमालय में पाया जाता है, और वो ऐसा पक्षी है। तो उस पक्षी हाँ, वो क्या उसका उदाहरण इसलिए दिया गया है, उस पक्षी की भांति हम भी हैं, भुरुंड पक्षी की भांति, कि हम क्या करते हैं, केवल कृष्ण कथा को या किसी की बात को सुनते हैं। वो किस लिए सुनते हैं कि मुझे ना अभी लेक्चर तैयार करना है, इसलिए मैं क्या करूंगा, लेक्चर सुनूंगा, पालन नहीं करूंगा। सुनना किस लिए? दूसरों को उपदेश देने के लिए, लेकिन खुद के जीवन में लागू नहीं करना है। तो ये भुरुंड पक्षी की भांति जो श्रवण करता है, ऐसे श्रवण से भी कोई लाभ नहीं। इस प्रकार के एटीट्यूड से, इस प्रकार की जो मनोवृत्ति है, उससे भी हमारा जो चित्त है कभी शुद्ध नहीं होगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, बहु जन्मे करे यदि श्रवण कीर्तन तब तना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। तो ऐसा श्रवण और कीर्तन हम जन्मों जन्मों तक करते रहे, पूरे भागवतम का पहले स्कंध से 12वें स्कंध के आखिरी श्लोक तक सारे क्लासेस अटेंड करते रहेंगे। लेकिन इस प्रकार की मनोवृत्ति, इस प्रकार की भावना को यदि धारण करके हम अपना श्रवण कीर्तन करेंगे, तो हम कभी भी जो प्रेम रूपी प्रयोजन है, सिद्धि है, उसको प्राप्त नहीं कर सकते। और तीसरा क्या है? तीसरा जो अधम श्रोता है उसकी तुलना की गई है बैल से। बैल, जिस प्रकार से बैल के सामने है, आप खजूर रख दो, केला कुछ भी रख दो, उसको सब कुछ समान है, एक जैसा ही है, चाहे अच्छा अच्छी चीजें भी रख दो, वो तो अपना घास खाने में मस्त है। तो कुछ ऐसे श्रोता होते हैं बैल के भांति, तो कहेंगे, हमने पूछा कि कैसे थी कथा, कैसे थी? कहते प्रभु जी बहुत ठीक थी, सब कुछ ठीक था, हम देखेंगे पालन करेंगे या नहीं करेंगे, सोचेंगे। हम बोलते हैं ना, जब करेंगे यहां सोचेंगे, पालन करेंगे यहां सोचेंगे, देखेंगे। तो इस प्रकार की जो भावना है, उनको सब कुछ एक लगता है और वो कभी भी उसका पालन करने के लिए उत्साहित नहीं रहते। और चौथा प्रकार का जो श्रोता है, जिसकी तुलना की गई है इससे ऊंट से की गई है। हाँ, ऊंट से इसलिए की गई है कि वो जो श्रोता है वो क्या करता है, आता तो है क्लास में, लेक्चर सारे तो सुनता है, भागवत कथा का निरंतर कानों के द्वारा श्रवण करता है, हाँ, लेकिन क्या करता है, आकर वो अपने काम में लगता रहता है, इधर आकर भी, हाँ, काम के समय में गप के समय जब और जब के समय गप, ये स्लोगन है इसका। तो मतलब आएगा, कथा सुनते रहेगा, लेकिन अपने मोबाइल में काम करते रहेगा, मेल चेक करते रहेगा और बहुत सारे काम करते रहेगा। कुछ लोग होते ना, दो तीन चीजें ले जाते हैं, नोटबुक भी ले जाते हैं, उनको कुछ एक्सरसाइज सब लिखते रहते हैं, वो नोट्स नहीं बना रहे हैं। कई ऐसे भक्तों को या कई ऐसे डिवोटीज को देखा है, वो अपने काम श्रवण को छोड़कर बाकी सब चीजें श्रवण के समय करते रहेंगे। तो इस प्रकार से ये जो व्यक्ति है वो कृष्ण कथा से आसक्त नहीं हो सकते। तो ऐसा श्रीमद् भागवतम को व्यक्ति तभी धारण कर सकता है जब गंभीरता से श्रीमद् भागवतम को सुनते रहे। सुनिते सुनिते से कृष्णदास कविराज ने का सोचा, वो लिखते हैं कि कुछ लोग कह सकते हैं चैतन्य चरितमृत बड़ा कठिन वस्तु है, उसमें तो इतने सारे संस्कृत श्लोक वगैरह है, कैसे समझ में आएगा। तो उसका उपाय कृष्णदास कविराज ने बताया, उन्होंने कहा सुनिते सुनिते से केवल व्यक्ति सुनते रहेगा बारंबार, तो सामर्थ्य आ जाएगा उस विषय को समझने का। तो ये क्या उपाय है, गंभीरता से हम श्रीमद् भागवतम को सुने और श्रीमद् भागवतम हमारे हृदय में उतर सकता है, श्रीमद् भागवतम हम अपने हृदय में धारण कर सकते हैं जो कृष्ण से अभिन्न है। तो आज का जो श्लोक है, ये जो श्लोक पिछले कई दिनों से बहुत महत्वपूर्ण श्लोक श्रीमद् भागवतम के चल रहे हैं। हाँ, जैसे आपने पहले सुना कि श्रीमद् भागवतम में जो संवाद है भगवान और ब्रह्मा के बीच शुरू हुआ है, ब्रह्मा ने तपस्या की जिसके द्वारा भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और अपना प्रेम प्रदर्शन करते हैं। भगवान कैसे अपने प्रेम का प्रदर्शन करते हैं, ब्रह्मा के साथ अपना हाथ मिलाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ब्रह्मा से अपना जो संबंध है सख्य भाव उसको स्थापित करते हैं। यावत सखा सख्यो निवेशते कृतः, जिस प्रकार से ब्रह्मा कहता है कि एक सखा एक मित्र अपने मित्र से हाथ मिलाता है, हे भगवान आप मुझसे हाथ मिला रहे हो। और वास्तव में भगवान को फिर ब्रह्मा बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। भगवान कहते कि आप सर्वज्ञ हैं, आप मुझे बताइए कि आपका दिव्य रूप होकर भी आप सांसारिक रूप धारण करते हैं किस प्रकार से, और आप कैसे इस जगत का पालन सम्मान और उत्पत्ति आदि करते हैं, किस प्रकार से अपनी शक्तियों को प्रकट करते हैं, ये सब आप मुझे दार्शनिक रूप से बताइए, फिलोसॉफिकल मुझे इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए। वो कहते हैं कि मैं जानता हूं, ब्रह्मा कहते हैं कि इन सब चीजों को मैं जानना चाहता हूं। हाँ, क्यों जानना चाहता हूं मैं आपके बारे में, क्योंकि आपके बारे में जितना अधिक मैं जानूंगा उतना ही अधिक मैं आपकी सेवा में स्थिर होते जाऊंगा। फिर कोई भी वस्तु ये जगत की मुझे विचलित करने कर नहीं सकती। और दूसरा क्या है कि मैं जब आपके बारे में जानूंगा तो इस भौतिक जगत के जो कार्य है उन कार्यों के द्वारा मैं कभी भी बद्ध नहीं होऊंगा, ये जगत के कार्य मुझे कभी भी बांधेंगे नहीं। इसलिए तो गीता में कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्व अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे दिव्य कार्यकलाप जन्म कर्म आदि को जानता है वो इस जगत से परे हो जाता है। फिर ब्रह्मा बहुत अपने हृदय से कृष्ण को प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्ण, आपने तो मुझे बहुत बड़ा टास्क दिया है, बहुत बड़ा कार्य दिया है। और वो कार्य क्या था, सर्ग और विसर्ग, विसर्ग में सृष्टि करना, इस जगत के शरीर आदि की रचना करना, सारे लोगों की सृष्टि करना, ये सब कार्य बहुत बड़ा कार्य उनको दिया था। तो वो प्रार्थना करते हैं, तीन तीन चीजें उस प्रार्थना में ब्रह्मा कहते हैं। वो कहते हैं कि आप मुझे शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करो कि इस कार्य को जो आपने मुझे सेवा दी है उसको मैं पूरी कर सकूं। और दूसरी चीज क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जब मैं इन सेवाओं को करूंगा तो आपसे प्रार्थना है कि मैं अपनी अचीवमेंट्स, हाँ, जो यश में प्राप्त करूंगा, अपनी सेवा की जो पूर्णता है उनको प्राप्त करने के बाद मेरे अंदर कभी भी गर्व उत्पन्न ना हो, मैं घमंडित ना हो जाऊं अपनी योग्यताओं के कारण। और तीसरी चीज वो कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं कभी भी आपकी सेवा से विचलित ना हो। तो इस प्रकार से ब्रह्मा प्रार्थना करते हैं बहुत ही निष्कपट होकर अपने आंतरिक हृदय से, और इसको देखकर हम भगवान बोलने लगते हैं। और वास्तव में मैं सोच रहा था कि जिस प्रकार से अर्जुन के पास जो सेम योग्यता थी भगवद गीता सुनने के लिए, वही सेम योग्यता श्रीमद् भागवतम को सुनने के लिए ब्रह्मा के पास थी। अर्जुन के पास क्या योग्यता थी, भगवान कहते हैं भक्तों से में सखा चेति रहस्यम हे तदुत्तम, हे अर्जुन तुम मेरे भक्त हो, बल्कि भक्त ही नहीं तुम मेरे क्या हो, सखा हो। तो उसी प्रकार से भगवान भी अपना जो साक्षता संबंध है वो ब्रह्मा के साथ स्थापित करते हैं अपना हाथ मिलाकर, और फिर क्या करते हैं, वो उनके भक्त हैं, महान भक्त हैं ब्रह्मा, पहले भक्त हैं इस जगत के, पहले जीव है और पहला जीव ही भक्त है। बहुत रेयर होता है कोई ब्रह्मा, सारे ब्रह्मा भक्त नहीं है। तो इस प्रकार से वो भक्त थे, सखा भी थे, तो भगवान उनको ये दिव्य ज्ञान देते हैं। तो भागवतम के पहले श्लोक में वर्णन आता है तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, तेने ब्रह्म, ब्रह्म मीन्स भगवान ने किसको ज्ञान दिया, आदि कवये, आदि कवि ब्रह्म का दूसरा नाम आदि कवि है, जिनको भगवान ने ये दिव्य ज्ञान प्रदान किया। तो ये जो श्लोकास है श्रीमद् भागवतम के जो अभी चल रहे हैं, हाँ, ये नवे अध्याय का 35वां श्लोक है। तो इस नवे अध्याय के जो 33, 34, 35 और 36, ये तीन चार श्लोकास है, ये चतुर श्लोकी भागवतम है, मूल भागवतम। भगवान ने ये श्रीमद् भागवतम बोला ब्रह्मा को चार श्लोकों में। और जो व्यास देव बहुत दुखी थे, उनको भी जब नारद ने भागवतम का उपदेश किया तो नारद ने केवल ये चार ही श्लोक उनको सुनाए, चार ही श्लोक सिखाए। और नारद ने कहा कि हे व्यास, तुम अभी इस कृष्ण कथा का विस्तार करो, ऐसा विस्तार करो कि सारा जगत कृष्ण के जो दिव्य कार्यकलापों से अवगत हो जाए और उनकी प्रेमा भक्ति में समर्पित हो जाए। तो ऐसा श्रीमद् भागवतम के जो चार श्लोक हैं, उसमें से ये तीसरा श्लोक है, 33, 34 और 35 है। तो श्रीमद् भागवतम में इसको चतुर श्लोकी कहा गया है, जैसे भगवद गीता भी चतुर श्लोकी है। भगवद गीता के 10वें अध्याय का 8, 9, 10, 11 ये चार श्लोकी गीता का सार है, उसी प्रकार से ये भागवतम का सार है, ये जो चार श्लोक है ये मूल भागवतम है। इसलिए श्रीधर स्वामी, बल्कि ब्रह्मा ने बहुत सारे चीजें बोली तो उसके बाद भगवान ने 7 श्लोक बोले हैं, जिसको वल्लभाचार्य कहते हैं कि ये 7 श्लोक की भागवत है। लेकिन गौड़िया आचार्य कहते हैं, विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु जो श्रीधर स्वामी को स्वीकार करते हैं प्रमुख आचार्य के रूप में, क्योंकि श्रीधर स्वामी ने श्रीमद् भागवतम पर इस जगत में सबसे पहली टीका लिखी, सबसे बड़ा पहले तात्पर्य लिखा। तो उन्होंने इन 4 श्लोक जो है, जिनको कहा कि भगवान ने ब्रह्मा के सारे प्रश्नों के उत्तर इन 4 श्लोकों में दिए हैं। और 4 श्लोकों में क्या चीज भगवान ने बोली है, भगवान ने केवल इन 4 श्लोकों में 3 प्रकार के ज्ञानों का वर्णन किया है, 3 प्रकार का ज्ञान हमें प्रदान किया है, जिसका वर्णन चैतन्य महाप्रभु ने मायावादी जो सन्यासी थे प्रकाशानंद सरस्वती, उनको ये 4 श्लोक और उनका एक्सप्लेनेशन सुनाया था। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, भागवते ययति न काय संबंध विद्य प्रयोजन, वो कहते हैं कि 4 श्लोकों में तो 3 प्रकार का नॉलेज है, एक है संबंध, दूसरा है अविद्य और तीसरा है प्रयोजन। तो संबंध, अभिदय और प्रयोजन, ये 3 प्रकार के ज्ञान या 3 प्रकार के जो तत्व है, इसका वर्णन इन श्लोकों में किया है। तो जो ये 34 और 33 श्लोक है इनमें भगवान संबंध ज्ञान का वर्णन करते हैं, और जो 35वां श्लोक है आज का, इसमें भगवान क्या करते हैं वर्णन, प्रयोजन तत्व, हाँ, कि जीवन का लक्ष्य क्या है, किस चीज को आपको प्राप्त करना है, उसका वर्णन इस आज के श्लोक में करते हैं। और जो 36 कल का श्लोक है उसमें भगवान अभिदेय तत्व, कि भगवत प्रेम आपके जीवन का प्रयोजन है, लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, उसको कैसे प्राप्त कर सकते हो, क्या क्या चीजें करनी होगी, जो कल श्लोक आएगा उसमें भगवान ब्रह्मा को वर्णन करते हैं। भगवान संबंध भक्ति अभिधेय प्रेमा प्रयोजन वेद तीन वस्तु का है। तो वेदों में तीन ही वस्तुओं का वर्णन है, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, और भक्ति वो प्रोसेस है जिसको अभिधेय कहते हैं टेक्निकल भाषा में, और लाइफ का जो गोल है वो प्रेम है, उसको टेक्निकल भाषा में प्रयोजन कहा जाता है। तो इन तीन तत्वों का वर्णन भगवान करते हैं। तो वास्तव में हाँ, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जो 33वां श्लोक था उसमें भगवान ये वर्णन करते ब्रह्मा को कि कौन है कृष्ण, हाँ, कृष्ण की परम श्रेष्ठता क्या है, हाँ, और जो 34वां श्लोक है उसमें भगवान माया क्या है, माया का वर्णन भगवान कल के श्लोक में किया था भगवान ने, वर्णन आज के श्लोक में जो प्रेम वस्तु है उसका वर्णन करते हैं। और कल के श्लोक में जैसे हमने चर्चा की कि भगवान उसका वर्णन करेंगे कि कैसे इस प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि जैसे पंच महाभूत, हाँ, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, वो हर एक के शरीर में है और फिर भी बाहर भी है, तो उसी प्रकार से हे ब्रह्मा मैं इस सारे जगत में व्याप्त हूं लेकिन फिर भी इस जगत का मैं नहीं हूं, इस जगत से मैं पृथक हूं, मेरा पृथक अस्तित्व है। वहां उसी की चर्चा भगवान भगवद गीता में करते हैं, मयातमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिनः मत्सानि सर्वभूतानि न चाहं त्वेषु वस्तुतः, कि मैं अपने अव्यक्त मूर्ति या अव्यक्त रूप में सारे जगत में व्याप्त हूं। तो भगवान कैसे व्याप्त है सारे जगत में, अपने शक्तियों के द्वारा, पराश शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च, अपने शक्तियों के माध्यम से भगवान सारे जगत में व्याप्त हैं, और साथ ही साथ उनका जो विस्तार है परमात्मा रूप में भगवान अपना विस्तार करते हैं, उसके रूप में भगवान सारे जगत में व्याप्त है। तो भगवान कहते यही मेरा ऐश्वर्य है, ये आश्चर्य करने वाले वस्तु है, हम भगवान उनको कहते हैं, भगवान कहते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा ने इसी चीज को ब्रह्म संहिता में बताया है। ब्रह्म संहिता बहुत सार ग्रह सार है, सारे शास्त्रों का निचोड़ है, हाँ, जो ब्रह्म संहिता है, सारे शास्त्रों के जो सिद्धांत है वो ब्रह्म संहिता के हर एक श्लोक में, हर एक शब्द में, हाँ, बहुत सूत्र रूप में दिए गए हैं। कोई व्यक्ति ब्रह्म संहिता का ठीक से अध्ययन करता है तो गौड़ीय संप्रदाय के सारे सिद्धांत को वो उचित रूप से समझ सकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत में गए, यात्रा में हम जाते हैं तो पहले से सोचते क्या खरीद के लाना है, नहीं क्या क्या लेना है मुझे, कपड़े लेने हैं, ये लेना है, वो लेना है। लेकिन महाप्रभु भी यात्रा में गए थे, जब गए तो उन्हें यात्रा से आते समय वापस क्या लाया, दो ग्रंथ लेके आया अपने साथ, बस वो उनका धन था। एक ग्रंथ था कन्याकुमारी के पास जो स्थान है आदिकेश्वर मंदिर, वहां से उन्होंने ब्रह्म संहिता को लाया। महाप्रभु ने कहा कि ये जो ब्रह्म संहिता ऐसा ग्रंथ है इसकी तुलना नहीं की जा सकती, सारे सिद्धांत का भागवत सबका सार इस ब्रह्म संहिता में है। तो उसी ब्रह्म संहिता का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो गोविंद महादि पुरुषम तमहम भजामि, कि भगवान इस जगत से पृथक है, वो सारे जगत में व्याप्त है, अखिल आत्म भूतो सारे जीवात्माओं के हृदय आदि में है, लेकिन उनका निवास स्थान कहाँ है, वो कहाँ रहते हैं, फिर भी गोलोक स्थान में, गोलोक नाम में निज धामनी तले चतश देवी महेश हरि धाम सुतेशु तेशु। तो गोलोक रूपी धाम में भगवान अपने जो मुक्त जीव हैं उनके संग में सदा निवास करते हैं और इस जगत में भी हैं। लेकिन जो मायावादी है, निराकारवादी है, निर्विशेषवादी है, निर्गुणवादी है, ये लोग क्या कहते हैं कि भगवान तो इस जगत में है नहीं। हाँ, भगवान का कोई रूप नहीं है, लेकिन भगवान का भौतिक रूप नहीं है। भगवान का जो रूप है वो क्या है? आध्यात्मिक है, सन्मय, चिन्मय और आनंदमय। ये तीन वस्तुओं से भगवान का जो रूप है वो बना है, और इसी को देखने के लिए व्यक्ति के पास क्या चाहिए? प्रेम की आंखें चाहिए। तो इसलिए इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं, वास्तव में चतुर्भुज विष्णु ये उपदेश दे रहे हैं। किसको? ब्रह्मा को। किसने हाथ मिलाया था? चार हाथों में से एक हाथ आगे भगवान ने किया था और वो उन्होंने पकड़ लिया। शेक हैंड, शेक मींस हिलाना, हिलाया नहीं, ठीक से धारण किया अपने हाथ में प्रेम पूर्वक। तो ऐसे भगवान अपना जो संबंध है उनसे स्थापित करते हैं, और भगवान कहते कि हे ब्रह्मा, ये सारे ज्ञान का रहस्य क्या है? कि मेरे प्रति प्रेममयी भावना का जीव के हृदय में विकास करना, और यही वास्तव में प्रयोजन तत्व है। यही इस श्लोक का सार है कि हर भक्त के हृदय में भगवान के प्रति अखंड अनन्य प्रेम का उदय होना, ये वास्तव में प्रयोजन तत्व है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, चैतन्य महाप्रभु ने जो पहले, महाप्रभु से पहले जितना भी शास्त्रों का अंडरस्टैंडिंग था समाज में, वो यही था, चार चीजें, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन महाप्रभु आए तो महाप्रभु ने इस मोक्ष को भी दूर कर दिया, मोक्ष को भी निम्न बताया। महाप्रभु ने कहा कि इससे परे भी एक वस्तु है, उसको कहा जाता है प्रेम। इसलिए महाप्रभु ने कहा प्रेम कुमार तो महान, भगवान के प्रति जो प्रेम की भावना है वो विकसित करना, ये वास्तव में सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आमाते प्रीति से ही प्रेम प्रयोजन, मुझमें जो प्रीति करता है होती है वो वास्तव में प्रेम है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जो योगी है वो अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे अष्ट सिद्धियों में भी सर्वश्रेष्ठ क्या वस्तु है? भक्तिन सिद्धि गरियसी, भक्ति या प्रेमा भक्ति का हृदय में विकास होना। तो इस श्लोक के तात्पर्य में जीव गोस्वामी लिखते हैं कि भगवान ये जो प्रेम वस्तु है उसको बड़ा संभाल के रखते हैं। भगवान ये प्रेम वस्तु जो भक्ति है उसको तिजोरी में रखते हैं। जीव गोस्वामी कहते हैं कि जिस प्रकार से पारस पत्थर है, चिंतामणि स्टोन है, वो एक डिब्बी में रखा जाता है, उसी प्रकार से भगवान भी ये जो प्रेम वस्तु है इसको भी छुपा के रखते हैं, सबको सरलता से प्रदान नहीं करते। और जिस भक्त के हृदय में ये प्रेम है वही व्यक्ति वास्तव में भगवान को सब जगह देख सकता है। इसलिए श्रीमती राधिका का नाम क्या है? कृष्णमयी। कृष्णमयी कृष्ण जार भीतरे बाहरे, जहां जहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण स्फुरे, कि कृष्ण जिनके भीतर और बाहर है, जहां जहां श्रीमती राधिका या महान भक्त अपने नेत्र डालते हैं वहां वहां जो कृष्ण है उनको स्फुरित हो जाते हैं। हाँ, तो उसी प्रकार से जो भगवान भी अपने भक्त के हृदय में दर्शन प्रदान करते हैं, भगवान को भी जो प्रेमी भक्त है वो सदैव देखता है अपने आंखों के सामने। स्थावर जंगम ना देखे तार मूर्ति, वो ये जगत का जो वस्तु विशेष आदि है उनको नहीं देखता है, वो किसको देखता है? कृष्ण को देखता है, कृष्ण का स्फुरित स्फुरण वो आता है। जैसे श्रील प्रभुपाद, अरे हम मंदिर आते हैं तो हमें भगवान की मूर्ति नजर आती है, विग्रह नहीं। हाँ, आचार्य जब मूर्ति की प्रतिष्ठापना करते तब उसको विग्रह कहा जाता है। तो जब महान भक्त दर्शन करते हैं, प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत में लिखते कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी गए और पहली बार उन्होंने जगन्नाथ का दर्शन किया, दर्शन करने मात्र से मूर्छित हो गए। प्रभुपाद कहते ये दर्शन का परफेक्शन है, ये सिद्धि है, देखने मात्र से मूर्छित हो जाना। हाँ, तो जब श्रील प्रभुपाद अलग अलग मंदिरों में ट्रैवल करते थे तो एक जगह एक मंदिर में गए तो देखा, प्रभुपाद ने कृष्ण को देखा, टेम्पल प्रेसिडेंट को बोला इधर आओ, टेम्पल प्रेसिडेंट आया, प्रभुपाद बताइए बताइए क्या हुआ। वो डरा हुआ था बेचारा कि डेटी वर्षे में कुछ अपराध तो नहीं किए। तो उन्होंने कहा कृष्ण ना बहुत बीमार लग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कुछ तुम ऑफरिंग वगैरह सही से ऑफर करते हो कि नहीं करते हो, कुछ कम तो नहीं किया। तो उन्होंने प्रेसिडेंट ने कहा प्रभुपाद हम मंदिर में ना फंड आ नहीं रहा है ज्यादा, बहुत कलेक्शन नहीं हो रहा है, बहुत कम लक्ष्मी आ रहा है, कम धन आ रहा है। पहले हम 6 ऑफरिंग लगाते थे, अभी 4 ऑफरिंग भगवान को कर रहे हैं। तो प्रभुपाद इस प्रकार से देखते हैं तो वो आश्चर्यचकित हो गया, वो जो टेम्पल प्रेसिडेंट था। प्रभुपाद हर एक मंदिर में गए तो वहां जो विग्रह को देखा तो कृष्ण को देखते रहे। प्रभुपाद ने कहा फिर से प्रेसिडेंट को बुलाया, सारी जिम्मेदारी किसके सर में जाती है, टेम्पल प्रेसिडेंट, कोई कुछ भी कर ले गला किसका पकड़ा जाता है, जो प्रभु का अधिकारी है। तो अधिकारी होना कोई सर्वसाधारण टास्क नहीं है। हाँ, तो प्रभुपाद ने बुलाया इधर आओ। प्रभुपाद ने कहा देखो ये जो कृष्ण है ये बहुत थके हुए लग रहे हैं, टायर्ड लग रहे हैं, तो बताओ क्या कारण है। तो उन्होंने कहा प्रभुपाद आजकल ना मंदिर में बहुत लोग आने लगे हैं, बहुत गेस्ट आते हैं और लेट नाइट तक आते हैं, तो हम जो 9 बजे बंद करने का समय था उसको लंबा कर दिया है। तो भगवान बहुत थक जाते थे खड़े खड़े, उनको रेस्ट करने का समय ही नहीं है, वो उनको खड़ा रहना था, खड़ा रहना होता था लोगों के लिए। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, टेम्पल को क्या करो ऑन टाइम उसको बंद करो, क्योंकि कृष्णा और कृष्ण के विग्रह में कोई अंतर नहीं है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज भी एक बार मंगल आरती में गए, उनका जो मठ था सच्चिदानंद गौड़िया मठ, भक्ति विनोद ठाकुर के नाम से उन्होंने एक मठ बनाया था, उस मठ में गए। तो पुजारी रात को, पुजारी को जल्दी रहती है, जब ठंड होती है तो और जल्दी होती है मंदिर बंद करने के लिए ना, कौन सब चिंता करता रहेगा, सारा जगत रजाई को लेकर सो रहा है, मैं कहा इधर ठंड में कुछ वस्त्र भी नहीं पहनने पड़ते, खुला रहना होता है। तो वो भी बेचारा फटाफट अपनी सेवा करके भागा चला गया, जाकर सो गया। सुबह भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उठे और आए मंगल आरती, मंगल आरती आए तो देखा अरे ये क्या है। उन्होंने देखने मात्र से पहचान लिया कि कृष्ण को रात को ठीक से नींद नहीं आई। हाँ, उनकी नींद क्या हो गई है, जैसे हम नींद नहीं होती तो लगता नहीं कि थके हुए हैं, हम आंखें लाल हो गई हैं और बिल्कुल उदासी छाई हुई है, तो ऐसा हो रहा था। तो उन्होंने पुजारी को बोला पुजारी इधर आओ, तो बताओ क्या कारण है, तुम कुछ भूले तो नहीं, मुझे लग रहा है कृष्ण को ठंड लगी होगी या मच्छरों ने काटा होगा। तो उन्होंने कहा, वो ध्यान देने लगा, कहा भक्त गुरुदेव मैंने ना कल मच्छरदानी लगाना भूल गया था। भक्ति सिद्धार्थ महाराज ने कहा वो तो प्रभुपाद होते तो बोलते रास्कल, कुछ और बोले होंगे बंगाली में। उन्होंने कहा तुम तो जब यहां से भाग गए अपनी मच्छरदानी लगाने नहीं भूले, कृष्ण की मच्छरदानी लगाना भूल गए। तो कहना चाहते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कि कितना सावधान होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो महान भक्त है वो देखते हैं। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के मठ में कई सारी घटनाएं हुई, बहुत विपदाएं आई। एक बार जो उन्होंने एग्जीबिशन बनाया था चैतन्य एग्जीबिशन, जिसमें कई सारे डायरोमास वगैरह थे, उसका हॉल बनाया था टीम के शेर सा, तो वो सारा तूफान आया टूट गया। फिर उन्होंने जो मंदिर बनवाया था उसमें जो रामानुजाचार्य 4 आचार्यों को स्थापित किया था, उनके छोटे छोटे मंदिर थे, वो भी उसका डोम टूट कर गिर गया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज डीटीस को देखने लगे, देखा कि कृष्ण क्या है प्रकोपित हो गए हैं, जैसे होता है ना क्रुद्ध हो गए हैं। तो उन्होंने कहा भक्तों को बुलाया क्या कारण है, मंदिर में विपदा आना, चोरी होना, कोई व्यक्ति बहुत बीमार हो जाना, या कुछ चीजें होना, ये 1930 में। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा वास्तव में विग्रहों के प्रति सेवा अपराध हो रहा है, उनकी सेवा उचित ढंग से नहीं हो रही है। तो पुजारी उनकी क्लास लगाना शुरू की, पुजारी थर थर कांपने लगे। एक ने कहा कि मैंने अपराध किया है, क्या किया है। उन्होंने कहा मैंने डीटी रूम में अपने प्रेमिका को पत्र लिखा, विग्रह डीटी रूम में, तो इसके कारण जैसे ही ये सारी चीजें होती हैं, तो ये सब विपदाएं आती है। और महान आचार्य भगवान को अपने दिव्य दृष्टि के द्वारा देखता है, इसलिए चैतन्य चरितामृत कहता है अप्राकृत वस्तु नहि प्राकृत गोचर। अप्राकृत मीन्स ट्रांसेंडेंटल, दिव्य। तो जो दिव्य वस्तु है वो प्राकृत इंद्रिय के द्वारा, चमड़े के आंखों के द्वारा देखी नहीं जा सकती, उसके लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है, दिव्य प्रेम की आवश्यकता है हमारे हृदय में। हाँ, तो इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के पास एक शिष्य आया और उस शिष्य ने कहा, गुरुदेव मैं ना इसी जीवन में कृष्ण को देखना चाहता हूं। उन्होंने कहा, अच्छा क्या आपकी इच्छा है, इसी जीवन में देखना चाहते हो, तुम भगवान को देखना चाहते हो या भगवान तुम्हें देखना चाहते हैं? हाँ, या तुम भगवान को देखोगे या भगवान तुम्हें देखेंगे? भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा कि तुम क्या करो, गुरु की सेवा में निरंतर लगे रहो और अपने आप तुम्हारे अंदर योग्यता का विकास होगा और कृष्ण को देखने के लिए तुम्हारे अंदर योग्यता आ जाएगी और तुम सरलता से कृष्ण को देख सकते हो। और वास्तव में कृष्ण को देखना मीन्स माया को न देखना। एक बार एक व्यक्ति भक्ति सिद्धांत महाराज को मिला और भक्ति सिद्धांत महाराज को कहा कि हे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, मैंने ना कल रात में यमुना के किनारे बैठा था और वहां मैंने कृष्ण का दर्शन किया। तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते, तुम्हें वह माया भी दिखाई दी होगी। उन्होंने कहा, माया तो नहीं दिखाई दी मुझे। तो उन्होंने कहा, अभी तुम माया को देख रहे हो, हाँ इसका मतलब तुमने कृष्ण को देखा नहीं है। जिसने कृष्ण को देखा है, जिसका आकर्षण कृष्ण के प्रति हुआ है, उसका आकर्षण वास्तव में माया के लिए रंच मात्र भी नहीं रहेगा। और यही परीक्षा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा कि माया के प्रति इंटरेस्ट खत्म हो जाना यदि हमने कृष्ण को देखा है या कृष्ण को समझा है। हम तो इस प्रकार से इस श्लोक में जो जीवन का वास्तविक लक्ष्य है, प्रेम प्रयोजन, जो प्रेम है उसकी प्राप्ति, उसका वर्णन जो स्वयं भगवान ब्रह्मा को कर रहे हैं। तो ऐसी ये सर्वोत्कृष्ट वस्तु है जिसकी अभिलाषा हम सबको करनी चाहिए। इसलिए तो हमें सुबह सुबह श्रील प्रभुपाद ने सब आरती आदि है, जिनमें तुलसी आरती आदि में है, जिनमें यही वर्णन है कि कब वो दिन आएगा कि मैं अपने हृदय में भगवान के लिए जो प्रीति है वो प्राप्त कर सकूंगा। क्योंकि कृष्ण को वश में तभी किया जा सकता है। प्रेमे कृष्ण वश है, प्रेमे तार भजी। प्रेम के द्वारा ही कृष्ण वश में हो जाते हैं और प्रेम के द्वारा ही कृष्ण का भजन करना चाहिए एक व्यक्ति को। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु इस जगत में आए हैं सर्वोत्कृष्ट प्रेम वस्तु प्रदान करने के लिए। जब द्वापर युग के अंत में कृष्ण अप्रकट हुए तो कृष्ण ने सोचा, विचार करने लगे, अरे बहुत लंबा समय बीता है, मैंने इस जगत के जीवों को ब्रज प्रेम, अपना जो प्रेम है वो प्रदान नहीं किया। तो वो कृष्ण सोचने लगे, युग धर्म प्रवर्तन हय अंश है ते आमा बिना अन्य नारे ब्रज प्रेम दीते। तो कृष्ण सोचने लगे कि हर युग में तो एक एक युग अवतर जाता है, हर युग का धर्म की स्थापना करता है, लेकिन अभी जो कलयुग आने वाला है उसमें मैं जाना चाहता हूं, क्योंकि मेरे अलावा वृंदावन का जो प्रेम है वो देने का सामर्थ्य किसी और अवतार में नहीं है। अवतार सारा गोरा अवतार, सारे अवतारों का सार क्या है, गौरांग महाप्रभु है, प्रेम नाम प्रचारित यही अवतार। तो ये जो अवतार है प्रेम नाम का प्रचार कर रहा है। नरोत्तम दास ठाकुर ने इसलिए कहा, गोलो केर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन रतिना जन्मिलो केनोतार, कि चैतन्य महाप्रभु गोलोक का जो प्रेम है वो इस जगत में लेकर आते हैं। और वो प्रेम किस रूप में है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसा प्रेम चैतन्य महाप्रभु देने आए, और महाप्रभु जैसा उदार कोई अवतार नहीं है। महाप्रभु को अपने सर्वसाधारण नहीं स्वीकारना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु की महिमा को अधिक से अधिक हम जानेंगे तो हम जानेंगे जो भगवत प्रेम रूपी वस्तु है वो कितनी मूल्यवान है और हम कितने भाग्यवान हैं कि श्रील प्रभुपाद ने वो मूल्यवान वस्तु हमें सरलता से प्रदान करने के लिए ये जो आंदोलन है वो अकेले ने खड़ा किया है। फिर हमारे हृदय में सारी परंपरा के लिए, वर्तमान आचार्य वृंद के लिए, भक्तों के लिए जो कृतज्ञता का जो भाव है वो विकसित होगा। तो महाप्रभु वो आज वैष्णव है, भगवान है, मार खाय प्रेम दे दयालु तो नहीं है, मार खाते हैं लेकिन दूसरों को प्रेम देते हैं। तो ये जो भावना चैतन्य महाप्रभु के अलावा किसी के पास नहीं है। इसलिए कृष्णदास कविराज कहते हैं, पात्रा पात्र विचार नाही नाही स्थानास्थान। चैतन्य महाप्रभु नहीं देखते कि ये क्वालिफाइड है अनक्वालिफाइड है, जही जहां पाय तहां करे प्रेमदान। हर एक व्यक्ति को वो कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रेमी भक्त है उसका हृदय इस भावना से सदा भरा रहता है और जो भगवान के जो महान भक्त है वो भगवत प्रीति के अलावा अपने जीवन में किसी और वस्तु की कामना नहीं करते। इसलिए कृष्णदास कविराज कहते हैं, कृष्णेर चरण्य जदि अनुराग, कृष्ण बिनु अन्यत्र तार नाही रहे राग। कृष्णेर चरण्य जदि अनुराग, वास्तव में कृष्ण के चरण में यदि हमारा अनुराग हुआ है तो उसका लक्षण क्या है, कृष्ण बिनु अन्यत्र तार नाही रहे राग। राग में आसक्ति, कृष्ण के अलावा बाकी वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान विशेष में उसका आसक्ति बना नहीं रहता। इस प्रकार से ऐसे महान जो आचार्य गण है उनके जीवन में हमें जो प्रेम की भावना है उसको देखते हैं। लेकिन इस जगत में वो प्रेम वस्तु नहीं है, इस जगत में हम क्या है, प्रेम वो वास्तव में काम है। काम प्रेम दोहाकार विभिन्न लक्षण, काम और प्रेम में बहुत अंतर है। एक तो लोहे के समान है और दूसरा सुवर्ण के समान है। इस जगत का जो प्रेम है वो वास्तव में प्रेम नहीं है, वो सारा प्रेम कामना से भरा पड़ा है, स्वार्थ से भरा पड़ा है। इस जगत में कोई व्यक्ति किसी से प्रीति रखता है तो उसके अंदर किस चीज की मिलावट होती है, स्वार्थ की, अपनी इच्छाओं की पूर्ति की। और झूठा प्रेम है, और प्रेम वास्तव में प्रेम करने योग्य कोई वस्तु है या व्यक्ति है वो कृष्ण है। इसलिए रुक्मिणी कहती है कि हे कृष्ण, आपके अलावा इस संसार में कौन है जिनको मैं अपना हृदय प्रदान कर सकूं, आपके अलावा कोई और मुझे दिख नहीं रहा है। तो इस जगत का प्रेम तो केवल ओपन धोखाधड़ी है। जैसे राजा भर्तृहरि थे 6th century में, उनके छोटे भाई थे विक्रमादित्य, तो भर्तृहरि ने 3 शतकों की रचना की थी। एक था श्रृंगार शतक और एक था वैराग्य शतक और एक शतक मुझे याद नहीं आ रहा है, नीति शतक। हाँ, तो ऐसे भर्तृहरि जो राजा थे और एक समय उनके राज्य में एक ब्राह्मण ने बहुत बहुत गरीब था, वो पति पत्नी, तो उन्होंने सोचा हम मर रहे तपस्या करके मर जाते ज्यादा अच्छा है, तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते उनको एक फल, भगवान ने एक फल दिया, जो कल्प वृक्ष है उसका एक फल दिया जिसको खाने से आपकी आयु लंबी हो सकती है। तो अभी वो जो पति है, ये जो फल मिला वो सोच रहा था क्या जीवित रहने से क्या लाभ, वो सोच रहा था कि इसको खाता और लंबी आयु करता हूं। तो पत्नी ने कहा नहीं नहीं, हमारे पास अभी भी जीवन है लेकिन खाने के लिए भोजन नहीं है, रहने के लिए स्थान नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र आदि नहीं है, तो और लंबी आयु प्राप्त करके क्या लाभ हमारे जीवन में। उन्होंने कहा बेस्ट है ये फल ना राजा को दे दो। तो राजा को क्या होगा, राजा लंबी आयु प्राप्त कर सकता है, हमें धन आदि मिलेगा, फिर हमारा जीवन यापन हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो पत्नी ने कहा, तो ये गया ब्राह्मण, कहा राजा ये फल आपके लिए है, ये फल खाने मात्र से शाश्वतता आप लंबी आयु प्राप्त कर सकते हो। तो राजा सोच रहा था, राजा अपनी पत्नी से बहुत आसक्त था, पिंगला रानी, उनके रानी का नाम था क्या, पिंगला रानी से बहुत प्रेम करता था। इतना प्रेम कि उसके सौंदर्य के कारण उसने सौ श्लोकों की रचना कर दी, उसको नाम श्रृंगार शकल। अब कितना परिवर्तन आ जाता है, श्रृंगार उसके सौंदर्य का वर्णन करते करते सौ श्लोकों की रचना की, उसे इतना आसक्त था। तो फिर ये जब ब्राह्मण गया, उन्होंने फल दिया, फल देकर सोचा हाँ ठीक है मैं ग्रहण करूंगा, लेकिन ब्राह्मण गया अंदर से सोच रहा था ये फल किसको दूंगा, तो मेरी जो प्रिया है पिंगला रानी है उसको दूंगा। ये संसार में भी देखते हैं, हम कोई अच्छी वस्तु तो हम किसको देना चाहते हैं, जिनसे हम आसक्त हैं, जिनसे प्रीति रखते हैं। यदि भगवान से प्रीति रखते हैं तो भगवान को हम हमारी जो प्रिय वस्तु है वो देना चाहते हैं, बेस्ट चीज ऑफर करना चाहते हैं। तो उन्होंने पिंगला रानी को दिया, पिंगला रानी को कहा खाओ, वो भी किसी और से आसक्त थी। हाँ, वो जो उनका सेनापति था महिपाल, उससे वो आसक्त थे। तो वो जो पिंगला रानी है, उन्होंने कहा नहीं अभी मैंने स्नान करूंगी और उसके बाद एक खाऊंगी फल को खाऊंगी। अभी राजा को इतना विश्वास था, उन्होंने कहा उस फल को खा लेंगे, राजा चले गए। उसने वो फल लिया और वो सोचने लगी महिपाल जो सेनापति थे सारे राज्य के, फिर उनको बुलाया और उन्होंने कहा ये आपके लिए फल है। अभी वो जो महिपाल है वो भी जो एक और नृत्यांगना थी उस राज्य में, लक्ष्य या लखा समथिंग उसका नाम था, और उसको उन्होंने बुलाया और कहा उसको जो मिलने गया कहा ये फल आपके लिए है। लेकिन वो जो नृत्यांगना है वो भी किससे प्रेम रखती थी, राजा से। वो राज्य के थे, तो राज्य उस नृत्यांगना ने सोचा कि अरे इतनी अच्छी चीज शासन लंबा जीवन, मैं क्या करूं, मैं तो किससे प्रीति रखती हूँ, राजा से। बल्कि राजा को पता नहीं था कि वो उससे प्रीति रखती है, लेकिन उसने वो फल ले लिया और वो गई कहां, जहां राजा बैठे थे सिंहासन में, सारे मंत्री आदि बैठे हैं, गई और कहा हे राजधिराज आपको ये फल मैं अर्पित करती हूँ, और इस फल का गुणगान करने लगी। अभी ये गुणगान तो उन्होंने वो ब्राह्मण से सुना था सबसे पहले। हाँ, तो फिर वो लेता है और सारा रहस्य उसको खुल जाता है। हाँ, सारा जो चीज है सब समझ में आने लगता है। सार नवा द्वारे पूरे देही, शरीर में नौ द्वार है, सत्व गुण का लक्षण इन्हें सब में ज्ञान प्रकाशित होता है। तो उसको सारा ज्ञान प्रकाशित हो गया, राजा को समझ में आ गया कि ये फल, अरे ये दूसरा फल तो नहीं है, मैंने भी फल अपने पिंगला रानी को दिया था। फिर उसने देखा कि ये फल घूमते हुए आया है राजा के पास। राजा ने सोचा अभी ये किसी और को देने के लिए नहीं है, ये मुझे ही खाना होगा, आयु लंबी करनी है। फिर उनके हृदय में वैराग्य जागृत हुआ। मुझे वो श्लोक याद नहीं है, मैं वो मेरे नोट्स में ढूंढने का प्रयास कर रहा था लेकिन मिला नहीं। तो वो श्लोक उन्होंने बोला, फिर उसी क्षण उन्होंने बहुत चार लाइन का बड़ा श्लोक का रचना की। नेचुरली उनके हृदय से वैराग्य स्फुरित हो गया। हाँ, पूरी ये जो सिक्वेंस था उसको उन्होंने श्लोक में डाल दिया। उन्होंने सोचा कि कैसे है ये भौतिक जगत का जो प्रेम है, आज तो में प्रेम नहीं है, भौतिक जगत में तो काम ही अस्तित्व में है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं हम इस जगत में प्रेम नहीं है, क्या है, काम है। और वास्तव में जो ब्रजवासी गण है भक्त है वो प्रेम के भंडार है। इसलिए महाप्रभु कहते अतएव काम प्रेम बहुत अंतर, काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर। तो काम और प्रेम में बहुत अंतर है, काम तो अंधकार के समान है और जो प्रेम है निर्मल भास्कर सूर्य के भांति प्रकाशमान है, तेजमान है। क्योंकि प्रेम का स्वभाव क्या है, सर्व त्याग करे करे कृष्णेरा भजन, ये प्रेम का लक्षण है। सर्व त्याग करे, गोपिकाओं ने अपनी लज्जा है, अपना जो पारिवारिक स्नेह है, धर्म आदि जो नियम है, सब चीजों को त्यागा और इन सब चीजों को त्याग कर करे कृष्णेरा भजन, उन्होंने कृष्ण का भजन किया। कृष्ण सुख हेतु करे प्रेम सेवन, और सेवा क्यों, कृष्ण के सुख के लिए, कृष्ण को सुख प्रदान करने के लिए। हम सेवा भी करते तो उसमें मुझे सुख मिल रहा है इसलिए मैं सेवाएं करता हूं, इसलिए मुझे नाम मिल रहा है, मेरी प्रशंसा हो रही है, इस भावना से हम सारी सेवाओं में लगे हुए हैं। हमारे अंदर ये भावना नहीं है कि इसके द्वारा गुरु या कृष्ण आदि की प्रसन्नता होगी। इस प्रकार से ये जो भौतिक जगत में काम ही अस्तित्व में रखता है और प्रेम है नहीं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने इस जगत में प्रेम को लेके आए हैं। और वो प्रेम क्या है? कृष्ण नामेर फल प्रेमा सर्व शास्त्र काय, भाग्य से प्रेमा तो माय करी लबुदाय। कृष्ण नामेर फल, कृष्ण नाम का फल है प्रेमा, कृष्ण नाम का फल है कृष्ण के प्रति प्रेम। तो वास्तव में हम सबका जीवन इसलिए है कि हम कृष्ण के प्रति जो दिव्य प्रेम है, अनुराग है, उसको हम उजागर करें तो हम वास्तव में अपना जीवन सफल बना सकते हैं। रूप गोस्वामी ने बहुत अच्छी प्रार्थना लिखी है, कल रीडिंग कर रहा था। तो रूप गोस्वामी कृष्ण को प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्ण, हम मेरा जो अनुराग है इन चार चीजों में बढ़ना चाहिए। कौन से चार चीजों में कैसी मेरी आसक्ति हो, उसका वर्णन रूप गोस्वामी कहते हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं कि हे कृष्ण, मेरी आसक्ति इन चार चीजों में वैसी होनी चाहिए। प्रसाद में आपका जो चरित्र है, आपकी जो कथा है, लीला है, और आपका जो रूप है और आपका नाम है। तो रूप गोस्वामी एक श्लोक में कहते हैं पद्यावली में, आस्वाद्यम प्रमदार, आस्वाद्यम प्रमदार शलमेव श्रव्यम नवम जल्पितम बालाया इव दृश्यमुत्तम वधु लावण्य लक्ष्मीरिव प्रद्घोष चिर विप्रयुक्त वनिता संदेश वाणीव मे नैवेद्यम चरितम च रूप मनिषम श्री कृष्ण नामास्तुते। वो कहते हैं कि हे कृष्ण, जो आपका प्रसाद है वो मेरे लिए इतना आस्वादनीय बन जाए, उसमें इतना मेरा अनुराग बढ़े, जिस प्रकार से एक जो युवक है वो एक स्त्री है उसके अधरामृत को पीने के लिए उसका इतना आकर्षण होता है, वैसा ही आकर्षण मुझे आपके प्रसादम में होना चाहिए। उतना ही अनुराग प्रसादम के अलावा मेरे ओठों से, मेरे जीवा से, मेरे कंठ के नीचे कोई वस्तु नहीं जानी चाहिए। रूप गोस्वामी कहते हैं इस प्रकार का आकर्षण जिस प्रकार से है व्यक्ति को, वैसा ही आकर्षण, वैसा ही आस्वादन मेरा आपके प्रसादम के प्रति होना चाहिए। वो कहते हैं कि आपकी कृष्ण कथा का वर्णन करने के लिए और कृष्ण कथा सुनने के लिए मुझे ये जो कृष्ण कथा है इस प्रकार से लगनी चाहिए टेस्टी, जिस प्रकार से एक नवविवाहिता जो बालिका है उसके वचन सुनने के लिए जो युवक है वो आनंद का अनुभव करता है, उसके वचनों को सुनने के लिए क्या करता है, आनंद की अनुभूति होती है। एक एक शब्द उसे अमृत की भांति लगता है और हर एक शब्द को वो सुनना चाहता है अटेंटिवली, गंभीरता से, गदगद हो जाता है। उसी प्रकार से हे कृष्णा, जब मैं आपकी कथाओं का वर्णन करूं और आपकी कथाओं को सुनूं, आपका जो चरित्र आदि है वो भी मुझे उसी प्रकार का स्वीट, उसी प्रकार का मधुर लगे। और वो कहते हैं कि आपका रूप को देखने के लिए फिर मैं सदैव लालायित रहूं। जिस प्रकार से एक नवविवाहिता वधु के सौंदर्य को देखने के लिए जो युवक है वो आनंद की अनुभूति करता है, वो सदैव उसके रूप को देखना चाहता है, उसी प्रकार की लालसा, उसी प्रकार का आनंद मेरे हृदय में हो कैसे आपका जो रूप है उसको देखने के लिए। और चौथी चीज रूप को स्वामी कहते हैं प्रद्घोष चिर विप्रयुक्त वनिता संदेश वाणी में, जो वनिता है जिस प्रकार से मैं आपके नामों का उच्चारण ऐसे करूं जिस प्रकार से एक प्रेमी और एक प्रेमिका बहुत लंबे समय तक विरह का अनुभव कर रहे हैं, एक दूसरे से बहुत दूर हैं, और जब प्रेमी कोई लेटर लिखता है वो लेटर जब प्रेमिका के पास जाता है तो वो उसको बहुत आनंद के साथ उच्च स्वर में पढ़ती है सबके सामने, और उसको लाउडली पढ़ती है और उसको सुनती है। उसी प्रकार से हे कृष्ण, आपके जो परम नाम है इसको मैं भी जोर से उच्चारण करूं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से महान आचार्यों की भावना है और वास्तव में परफेक्शन है, ये सिद्धि है आध्यात्मिक जीवन की, और यही हम सबके हृदय में कामना होनी चाहिए, जिसका प्रदर्शन हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं हम उन्होंने किया है। तो इस श्लोक में ब्रह्मा जी यही स्थापित करना चाहते हैं, प्रेम कुमार्थ महान, सबके जीवन का लक्ष्य है भगवान के प्रति प्रेम का विकास होना। भगवान के प्रति प्रेम का विकास होना मीन्स रूप गोस्वामी ने जो चार वस्तुएं कही है, प्रसाद है, भगवान की लीला कथा का वर्णन श्रवण है, और नाम का वर्णन या कीर्तन आदि है, इनके प्रति आसक्ति उत्पन्न होना, यही वास्तव में कृष्ण के प्रति आसक्ति उत्पन्न होना है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्रील प्रभुपाद की जस
Shine a little bit.
श्रीमद्भागवत